नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत की शहरी आबादी के 2035 तक 67.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है और इस मामले में देश चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के मुकाबले दूसरे स्थान पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया में शहरों में रहने वालों की संख्या पिछले स्तर पर पहुंच गई है और 2050 तक इसमें 2.2 अरब की वृद्धि की संभावना है। दुनिया में शहरीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि तेजी से शहरीकरण पर कोविड-19 महामारी का अस्थायी असर पड़ा है और इसकी रफ्तार महज थोड़ी देरी के लिए धीमी पड़ी है। इसमें कहा गया कि वैश्विक शहरी आबादी पिछले स्तर पर आ गई है और 2050 तक इसमें 2.2 अरब की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी आबादी के 2035 में 67.5 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है, जो 2020 में 48.3 करोड़ था। वहीं 2025 तक इसके 54.2 करोड़ और 2030 तक 60.7 करोड़ हो जाने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल आबादी का 43.2% हो जाएगा। रिपोर्ट में चीन के बारे में कहा गया कि वहां 2030 तक शहरी आबादी 1.05 अरब हो जाएगी, जबकि एशिया में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 2.99 अरब होगी। दक्षिण एशिया में ये संख्या 98.76 करोड़ होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक आबादी में बड़ी हिस्सेदारी है तथा इन देशों में आर्थिक वृद्धि से वैश्विक असमानता पर सकारात्मक रूप से असर पड़ा है। इसमें कहा गया है कि एशिया में पिछले 2 दशकों में चीन और भारत की आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, इससे गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। अमेरिका की लगभग आधी आबादी का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी 2021 को संसद भवन परिसर यूएस कैपिटल पर हमले में उनकी भूमिका के लिए अपराध का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक नए सर्वेक्षण से ये पता चला। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि अमेरिका के 48% वयस्कों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति पर उनकी भूमिका के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि 31% का कहना है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं 20% लोगों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में अपनी राय देने के लिए बहुत जानकारी नहीं है। 58% का कहना है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसकी बड़ी जिम्मेदारी ट्रंप पर है। ये सर्वेक्षण 6 जनवरी की घटना की जांच कर रही संसदीय समिति द्वारा 5 सार्वजनिक सुनवाई करने के बाद किया गया। दक्षिण कैरोलिना की डेमोक्रेट समर्थक इला मेदजे ने कहा कि ट्रंप का अपराध शुरू से ही स्पष्ट है, जब उन्होंने अपने समर्थकों से 6 जनवरी की सुबह संसद भवन की ओर मार्च करने का आह्वान किया था। सर्वेक्षण में शामिल एक अन्य प्रतिभागी क्रिस शुमलर ने कहा कि ट्रंप चुनावों में धोखाधड़ी के अपने निराधार दावों के साथ भीड़ को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बृहस्पतिवार को यहां थाईलैंड की फिटाया पॉन चेईवान को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने थाईलैंड की अपनी प्रतिद्वंदी को दूसरे दौर के 57 मिनट चले मुकाबले में 19-21, 21-9, 21-14 से हराया। 7वीं वरीय भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में चिर प्रतिद्वंदी चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से भिड़ेंगी। दुनिया के 21वें नंबर की खिलाड़ी HS प्रणय भी पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने 4थी वरीय चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन को 21-15, 21-7 से हराया। थॉमस कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत के नायकों में शामिल गैर वरीय प्रणय अगले दौर में इंडोनेशिया के 7वें वरीय जोनाथन क्रिस्टी से भिड़ेंगे। फिलीपीन में पूर्व तानाशाह के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बृहस्पतिवार को देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राजधानी मनीला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। फिलीपीन में इस घटना को हाल के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी में से एक माना जा रहा है, लेकिन मार्कोस के विरोधियों का कहना है कि उनके परिवार की छवि सुधरने के बाद ही ऐसा हो सका है। फिलीपीन के तानाशाह एवं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के पिता फर्डिनेंड मार्कोस को 36 साल पहले सेना के समर्थन से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। जनता के इस विरोध के परिणाम स्वरूप मार्कोस जूनियर के पिता की वैश्विक स्तर पर काफी आलोचना हुई। इसके बाद फिलीपीन में लोकतांत्रिक राजनीति का स्तर ऊपर उठा। मार्कोस जूनियर के पिता के शासनकाल में अत्याचारों का सामना करने वाले कार्यकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों ने मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का विरोध किया। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इलिनॉयस प्रांत से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की। कृष्णमूर्ति ने अपने प्रतिद्वंदी जुनैद अहमद द्वारा व्यापक स्तर पर चलाए गए सांप्रदायिक अभियान के बावजूद निर्णायक जनादेश हासिल किया। इलिनॉयस प्रांत में बेहद लोकप्रिय कृष्णमूर्ति ने जुनैद अहमद को 71% से अधिक मतों के अंतर से हराया। कृष्णमूर्ति ने इस जीत के बाद कहा, मैं इस जीत से बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।